الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُمَّ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ مَن زَانَتْ بِهِ الْأُسُرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ كَرِيم کا احسان ہے کہ رمضان المبارک میں پہلے عشرے میں ہی دوسرا جمعۃ المبارک نصیب ہوا. پچھلے جمعۃ المبارک میں فرضیت رمضان کے حوالے سے گزارشات پیش کی ہیں اور اسی آیہ کریمہ کا یہ تسلسل ہے جو آج تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. پچھلے حصے میں ایک پہلو جو عرض کرنے کا موقع ملا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرضیت رمضان اور اس کا وہ حصہ جو نتیجے میں ایک روزے دار کو اللہ رب العالمین کرم اور احسان فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، اسے وہ جو پرہیزگار ہونے کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، اس پر سحر حاصل بات کی، لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا چونکہ یہ کلام ذاتی ہے اور اس کی وسعت کا احاطہ کیا نہیں جا سکتا. بے شمار دفعہ یہ نکتے عوام کے سامنے بیان ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ عرض کرنے سے مقصد یہ ہوتی ہے کہ توجہ میں یہ حصے اور یہ چیزیں، یہ باتیں رہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور آج تک کچھ 2.5 لاکھ کے لگ بھگ یا زائد کہہ سکتی ہیں تفاسیر جو ہیں وہ تحریر ہوئی ہیں. اللہ کریم نے احسان فرمایا اپنے بندوں پر اور یہ تحقیق ہم جیسے کمزور علم لوگوں تک پہنچانے کا سبب بنے اور سہل انداز دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کا سبب بنے، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے. لیکن یہ نہیں کہا سکتا، نہ یہ حتمی بات ہے کہ آج تک جو تفاسیر تحریر ہوئی ہیں فقط وہی تفاسیر رہیں گی. کلام ذاتی رہے گا اور اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں کا ایک تسلسل رہے گا، چونکہ دار دنیا کی جو حیات ہے یہ منسلک ہی ایمان سے ہے. جیسے وجود انسانی ہے اور اس کی حیات اس کی روح کے ساتھ منسلک ہے، جتنا عزیز نام بھی ہو، جتنا عزیز رشتہ بھی ہو، روح کا اور اس متعلقہ بدن کا جب ربط ٹوٹ جاتا ہے تو ان سارے رشتوں کو چھوڑ کر فقط ایک بات کہی جاتی ہے اور وہ لفظ دیا جاتا ہے یا نام دیا جاتا ہے میت کا. اسی طرح یہ جو دنیا ہے، یہ جو عالم خلق ہے، اس کی حیات نور ایمان ہے، اور جس روز یہ نور ایمان نہیں ہوگا اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے یہ مہربانی فرمائی اور کرم فرمایا کہ اتنا سہل ہمارے سمجھنے کے اسباب فرمائے، اور آنے والے وقت میں جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے بھی وہی مسبب الاسباب ہے. جانے کتنے اور سبب بنیں گے اور کتنے پہلو ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے. تو ساری پچھلے جمعۃ المبارک کے بیان کی گفتگو کو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پہلو جو سارے ہیں وہ تو ہو نہیں سکتے، لیکن جو میں عرض کر سکتا تھا وہ بھی سارے پورے نہیں ہو سکے. تو کچھ حصہ اس حوالے سے بھی عرض کروں گا، اور پھر آگے جو آج آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے دن ہیں، چند دن ہیں، گنتی کے دن ہیں. اور فرمایا فمن کان منکم مریضن، پھر وہ حصے جس پر بات عرض کی جاتی ہے کہ دین اسلام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے. دین فطرت ہے، چونکہ خالق کی طرف سے ہے اور مخلوق کی طرف سے حکم ہے، تو جو اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا فرمایا وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی ضروریات کیا ہیں، इसकी इंतहाएं दोनों तरफ की, कमी की तरफ भी ज्यादती की तरफ भी क्या हैं, कितना ये बर्दाश्त कर सकता है और कितना बार है जो ये उठा सकता है। तो दीन इस्लाम दीन फितरत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये फरमाया कि ये गिनती के दिन हैं यानी चंद दिन हैं, तो सारे साल में चंद दिन हैं और उसमें भी मखसूस वक़्त है जो दिन का है कि जिसमें रोज़ा फ़र्ज फरमाया गया है और इसके अताओं में बेशुमार हिस्से जो कुर्ब इलाही के हैं वो नसीब होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो कैफियत दे जो इबादत की हकीकत है, क्योंकि इबादत की हकीकत जब बंदे को नसीब होती है तो बेशक इबादत एक मुजाहदा है, लेकिन उस मुजाहदे के लिए इंसान पूरी तौर पर कुल्ली तौर पर कारबंद हो जाता है और इबादत बार नहीं लगती, इबादत से दिल उकताता नहीं है। ये ज़रूर है कि मुजाहदा है और मुजाहदा मैं इसलिए इस हवाले से अर्ज कर रहा हूँ कि इबादत जो है वो आदत नहीं बनती, आदत सानिया नहीं बनेगी। हर दफ़ा हर लम्हे वुजू से लेकर नमाज की अदायगी तक, रोज़ेदार के रोज़ा रखने और सारा दिन रोज़े की हैसियत और कैफियत में पाबंदी के साथ बसर करने से अफ्तारी तक, फिर शाम की इबादत तरावी तक, एक एक हिस्सा आप ले लें तो इबादत जो हैं वो आदत नहीं बनती, उसके लिए एक मुजाहदा दरकार है। और एक गलतोलाम हिस्सा जो हमारी गुफ्तगू का है वो ये है कि दुआ कर दें जी कि नमाज जो है वो मेरी पाबंद हो जाए, दुआ कर दें मेरी इबादत अच्छी हो जाए, दुआ कर दें कि मैं गलती छोड़ दूँ। ये सारा कुछ ही तो इम्तिहान है, ये समझने की ज़रूरत है कि दिल नहीं चाह रहा उठने को, लेकिन ईमान पुख्ता ये बताता है कि इस उठने को पसंद फरमाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अस्सलातु खैरु मिनन नौम की जो सदा फिजाओं में गूंज रही है ये उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है और वो अंदाज जो उस हुक्म की तामील के हैं वो इरशादात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जाने हदूदो कयूद शरी जितनी भी हैं असूलो जवाबत और उनके इख्तियार करने तक सारे का सारा दीन वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो जब इस आया करीमा की तफसीर में आऊँगा और पहला हिस्सा जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैंने पिछली दफ़ा बात चूँकि वक्त पूरा हो गया तो तशनगी महसूस की, जब बात आती है ना नतीजे की लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ये परहेजगारी क्या है? ये परहेजगारी एक कैफियत है और जो कैफियात होती हैं उन्हें दिखाया नहीं जा सकता, न किसी ने बार के तौर पर कंधे पर उठाई होती हैं या सर पर लाद रखी होती, और ये वो मामला है जो उस बंदे और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी ज़ात अलीम है उसके माँ बहन है। इसीलिए तो ये असूल बयान होता है कि आप किसी को मुनाफिक उस वक़्त तक नहीं कह सकते जब तक कोई अमल ज़ाहरी ऐसा उसका जो है वो सबूत में ना आए, वगरना उसकी उस कैफियत का जो बातिन की है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानते हैं क्योंकि उसकी ज़ात अलीम है। अब जब बात इन कैफियत की आती है तो फिर ज़रूरत इस अमर की पेश आती है कि बंदा वहाँ पहुँचे जहाँ से इब्तिदा है। तो फ़राइज़ नबूवत पर जब बात आएगी तो कुरान करीम फ़राइज़ नबूवत में तीन हिस्से बयान फरमाते हैं, यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। ये फ़राइज़ नबूवत कुरान करीम में बयान फरमाएगी कि यतलू अलैहिम आयाती के तहत तमाम असूल वो जो ईमान से मुतल्लिक हैं, तमाम शरायत वो जो एक साहिब ईमान के लिए ज़रूरी हैं और हदूद हैं उनकी बात आगे कि उनसे शनासाई, जो अकायद हैं जो ईमानियात के हिस्से हैं उनसे शनासाई, ये पहला फरीज़ा है, फरीज़ नबूवत ये जो पहला हिस्सा कुरान करीम बयान फरमाता है। अब अमली ज़िंदगी में जब बात आती है तो इख्तियार किसी बात के करना उसके मानने के साथ दूसरा हिस्सा इख्तियार के तौर पर आता है कि उस अमर को इख्तियार किया जाए, लेकिन دین فطرت ہے اور تمام فطری تقاضوں کو اسلام پورا فرماتا ہے، اس درمیان میں ایک حصہ ہے جسے اگر آپ غور کریں تو میں اور آپ بھی جان سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب کسی حصے کا علم ہو یا کسی اصول کا ماننا ہو اور پھر دوسری طرف عمل کی بات آئے تو اس کے مابین ایک ایسا حصہ ہے جو بیان نہیں ہوتا، جو اس ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا، وہ حصہ کیفی ہے کہ اس جو جانا گیا ہے اس پر یقین کی کیفیت کس درجے کی. اب جو یقین کی کیفیت جس درجے کی ہوتی ہے اس جانے گئے پر عمل اس درجے کا ہوتا ہے. یہی تو سبب ہے کہ عبادات کو دیکھا جائے تو امت مسلمہ پوری دنیا میں آپ جائیں تو نظر آتا ہے کہ نماز پڑھنے والے لوگ ملتے ہیں. آپ حرمین شریفین کی زیارت کا موقع نصیب ہو تو 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی آپ حرم شریف میں جائیں تو جو جگہیں قریب کی ہیں وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جو پہلے عبادت کر رہا ہے وہ اٹھے تو مجھے جگہ ملے. نام ہیں، بیان ہیں، تحریر ہے، تحقیق ہے، کسی حصے میں بھی چلے جائیں بے شمار پہلو اور بے شمار حصے ملتے ہیں. لیکن عملی زندگی میں جب دیکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اسی شب و روز کی یہ شہادت موجود ہے کہ انتہائی قلیل تعداد تھی اور کثیر تعداد تھی ان کی جو مخالف تھے، جو حق سے ناآشنا تھے اور انہیں آشنائی کا سبب کیا اللہ نے بوسیلہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد قلیل تھی اور کثیر وہ تعداد تھی جو پھر مخالف ہو گئے. اس کے باوجود حق غالب آیا اور کثیر جو ہے اسے سرنگون ہونا پڑا، اس قلیل تعداد جو حق پر تھی اس کے سامنے. آج کیا سبب ہے کہ تعداد کثیر ہے، روئے زمین پر ذلیل ہو رہی، تو سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ مانا گیا ہے اس پر جو یقین کی کیفیت یا ایمان کا درجہ کہ جو عمل اختیار کیا جا رہا ہے اس میں کتنا صدق دل ہے وہ درکار ہے. چونکہ اللہ رب العالمین کے حضور جو نتائج مرتب ہوں گے ان نتائج کے مرتب ہونے میں ایسا نہیں ہے کہ ظاہر کا دیکھا جائے، اس ظاہر کے ساتھ شہادت باطن کی ہوگی تو وہ ظاہر بھی قبول ہوگا. تو اسی رمضان المبارک میں بھی آپ غور فرمائیں تو رمضان المبارک میں بھی یہ حدیث میں بھی ملتا ہے اور یہ تعلیم ملتی ہے دین اسلام کی کہ ماز منہ کا بند رکھنا یا ماز بھوکا اور پیاسا رہنا صرف یہ روزہ نہیں ہے، وہ سارے اصول جو اللہ نے پسند فرمائے، وہ سارے حصے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان کے تحت روزہ دار اگر روزہ رکھے گا تو شرف قبولیت نصیب ہو، اور اس شرف قبولیت سے وہ کیفیت نصیب ہوگی جو پرہیزگار کی ہے، یعنی اس کے نہاں خانے دل میں نیکی جو ہے وہ اس طرح اس کی محبت رچ بس جائے گی کہ وہ اپنے مجاہدے میں، اپنے معمولات میں، اپنے روزمرہ کی زندگی کے فیصلوں تک ان چیزوں کو مقدم رکھے گا جو اللہ رب العالمین نے پسند فرمائی. اب دوسرے حصے پر جب فرائض نبوت کے آتے ہیں کہ وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس، تزکیہ کیا جاتا ہے، تو تزکیہ جو ہے یہ پھر کیفی حصہ ہے، اور تصوف جو ہے اس پر جب بات کی جاتی ہے تو عرف عام میں تو لفظ تصوف کہہ دیا گیا کہ ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں لفظ تصوف کہہ دیا، اسے جب احادیث میں جا کر دیکھیں گے تو اسے احسان کے نام سے موسون فرمایا گیا، اور اسی شعبے کو جب آپ کلام ذاتی میں جا کر دیکھیں گے تو اسے تزکیہ نفس کہا گیا. وہ یزکیہم کہ شرائط ایمان کے ساتھ وہ کیفیت نیاں خانے دل میں پیدا ہو جو اس ماننے پر اس درجے کا یقین دے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ کتاب و حکمت کے جتنے حصے ہیں، یعنی امور دنیا میں جو انسانی زندگی کو پیش آنے والے جتنے حصے ہیں ان پر پھر عمل تب اس طرح کا ہو سکے گا جو ایمان کی ضرورت ہے جب وہ تزکیہ نفس نصیب ہو. تو روزہ دار کی کیفیت میں قرب الہی کی ایسی کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ اسے اس روزے کے دوران ہما وقت میت باری تعالیٰ کا ایک ایسی کیفیت اور ایسی حیثیت نصیب ہوتی ہے کہ لمحہ لمحہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم و جنہ کہ روزہ ڈھال ہے. تو رمضان المبارک میں ایک ایسی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے کہ جب روزے دار روزے سے ہوتا ہے تو کلام کرنے لگتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میرا کلام کو کمزور تو نہیں ہے, بد تو نہیں ہے, اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے, میرے روزے کی مکروہات کا سبب تو نہیں بن جائے. آنکھ اٹھاتا ہے کسی طرف دیکھنے لگتا ہے, حدود شرعی کا اسے خیال آ جاتا ہے, کہیں کوئی ساز بج رہا ہے یا کوئی گانا گایا جا رہا ہے یا کوئی فوش کلام ہے یا جھوٹ بولا جا رہا ہے, کوئی وہ آواز جسے شریعت اسلامیہ سے تجاوز جانا جائے وہ اسے سننا نہیں چاہتا, وہ اس سے گزر جاتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہ آواز میری کانوں میں نہ جائے, میرے روزے کو مکروہ نہ کر دے. تو روزہ دن بھر میں ایک ایسی ڈھال کا بھی کام کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے, ایسا ڈھال کے طور پر بھی کام کرتا ہے کہ شاید عمومی طور پر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے جو رمضان المبارک میں پھر اتنا خصوصی طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا تجاوز نہ آئے جسے عمومی بھی سمجھا جائے, تو ڈھال کا بھی سبب بنتا ہے. اور یہ وہ ساری کیفیت ہے جو ایک پرہیزگار کی ہے. پرہیزگار کو ذات کی پسند و ناپسند یا معمولات زندگی یا دنیا کی روش اس کے سامنے معنی نہیں رکھتی, اسے مقدم ہو جاتا ہے دین اسلام. اور میں خود کمزور اور گنہگار انسان ہوں, اسی زندگی میں زندگی جب تک اللہ کریم کو منظور ہے بسر کر رہے ہیں اور اللہ کریم کمزوریاں معاف فرمائے اور زندگی با ایمان اور موت جو ہے یہاں سے روانگی جو ہے بحالت ایمان عطا فرمائے, تو عبادات کے اختیار کرنے میں اس کیفیت کا جو نہاں خانہ دل میں اس کا بہت بڑا دخل. کئی بار بندہ عبادت کے اختیار کرنے کو جلدی کر رہا ہوتا ہے اور خیال ہو کہ میری کوئی مصروفیت ہے, جس لحظے حضور حق کی کیفیت نصیب ہوتی ہے شریر کانپ جائے. تو یہ میں نہیں, آپ تمام بھی اپنے معمولات میں جب غور فرمائیں کہ کسی عبادت کو بھی جب اختیار کیا ہوا ہے اور ایک لحظے کو حضور حق کی کیفیت نصیب ہو جائے تو وہ نہاں خانہ دل تک جا کر لرزاں آ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر. تو یہ وہ کیفیت ہے جو رمضان المبارک میں روزہ دار کو نصیب ہوتی ہے اور اس قابل ہوتا ہے کہ وہ معمولات زندگی میں کتاب و حکمت کے جو شعبے اور حصے ہیں جن کا ایک ایک حصہ بیان فرما دیا گیا ہے دین اسلام میں, ان پر پھر کاربند رہتا ہے اور انہیں اپنے لیے بار نہیں سمجھتا, پھر اسلام دوسرے کے لیے نہیں سمجھتا. یہ بھی ایک عجیب ہمارا آج حادثہ ہے کہ ہم اللہ کریم کی ذات پر تو بات آئے تو ہم کہتے ہیں اللہ کریم میرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات آئے تو ہم کہتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دین کی بات آئے تو یہ ہم کہتے ہیں مولانا کا ہے, جب بات کیفیات کی آئے تو ہم یہ کہتے ہیں بزرگوں کا ہے, اولیاء اللہ کا کام ہے اللہ اللہ کرنا, ہمیں ضرورت پیش آئے گی بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے تو مولانا کو بلا لیں گے, دعائیں کروانی ہوں گی تو بزرگوں کے پاس چلے جائیں گے, ایسی نہیں بات. یہ اس تعلق کی بات ہے, بندگی کا تعلق جسے نصیب ہو گیا اسے اس کی بیش قیمت ہونے کا احساس ہو جائے گا, اور جسے یہ احساس نصیب ہو گیا وہ سمجھے گا کہ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے مخاطب فرما, اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ اجازت دی کہ میں اسے یاد کروں. چونکہ دار دنیا کی جو محبتیں ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ معشوق کو معلوم بھی ہو یا معشوق کی کسی کو اجازت بھی درکار ہو. یہ عاشق اب کہاں تڑپ رہا ہے, کس درجے کا تڑپ رہا ہے, یہ اس کا اپنا معاملہ. یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں عاشق کی عشق کی کیفیت بھی پابند ہے, یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے عشق کی اجازت دے دی. اور عشق کی صورت کیا ہے؟ بندگی, ایسی نہیں جیسے مجھے پسند ہے. चूंकि दुनिया में असूल जो बात की जाती है कि जंग और मोहब्बत में सब जाए, ये दुनिया की और गलतुलाम बातें हैं, ये इरशादात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तजावज़ हैं। और हमारी कमजोरी है कि दुनिया में हम कसीर तादाद में होते हुए पहली रो में नहीं हैं, हम मुक्तदी हैं, और रवश जहान में जो है वो खराबी की है और तसल्लत जो है वो कुफ्र का है, जिस चीज़ को वो चाहते हैं आला करके बयान कर देते हैं। और हम बहसियत मुसलमान ये समझते हैं कि वो हिस्से जो दुनिया को लीड कर रहे हैं, भले वो गैर शरी हों, मेरे लिए मोतबर होना उसी में है कि मैं उसी तरह बात करूं, उसी तरह कलाम करूं, उसी तरह लिबास पहनूं, आदात उसी तरह हूं, खाऊं पीऊं उसी तरह। बात उस ताल्लुक की है, उस कैफियत की है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजों के बदले में अता फरमाई है, कि वो कैफियत जो मुत्तकी की है, वो हिस्से जो फराज़ नबूवत में दूसरे हिस्से पर आते हैं वो यज़क्की हैं, उससे आशनाई नसीब हो जाए तो फिर इबादत की हकीकत आ जाती है। इबादत की अदायगी में फिर ऐसा खुशू खुजू आ जाता है कि एक दफ़ा एद नबी अला सलात असाब में एक वाक़या पेश आया कि साहबी रसूल को तीर लगा। अब तीर जाते हुए तो एक नोक है, लेकिन उसे वापस खींचा जाए तो उसकी दो नोकें हैं, वो वापस नहीं निकलता। तो लगता तो है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब तीर वजूद से निकाला जाए तो उस तीर के लगने से तीर का निकालना ज्यादा तकलीफ दे। तो ऐसी जगह तो वो तीर लगा कि उसको निकाला नहीं जा रहा। तो अब क्या हो, किस तरह ऐसा हो कि जिन्हें जो जख्मी हैं उन्हें तकलीफ भी कम हो और तीर भी निकला जाए। तो उन्होंने फरमाया मुझे दो गाना नियत करने, यानी मैं दो नफल पढ़ता हूं तो जब मैं नफल पढ़ रहा हूं तो फिर आप तीर को निकालिए। दो नफल उन्होंने पढ़े और जब सलाम फेर कर पूछा कि तीर निकाला कि नहीं, तो अर्ज किया कि कब का निकाल लिया। यानी ऐसी हजूर हक की एक कैफियत थी, ऐसी बंदगी की एक चाशनी नसीब हुई कि अल्लाह जल्ला शानहु को रू बरू जानने की वो कैफियत इस दर्जे की थी कि वजूद से तीर कब खींचा गया और कितना वो वजूद को फाड़ कर निकला उन्हें एहसास ही। तो जब ये कैफी तौर पर ईमान मजबूती पर आता है तो फिर समझ आती है कि रमजानुल मुबारक की बरकत क्या है। वगरना तो शिकायत हैं कि जी मुश्किल है रोजा, शाम को हम रोजा रख कर सारा दिन रोजा भी रखते हैं और शाम को जो अल्फाज बोल देते हैं उस तकलीफ पर कि जी नकात हो गई है, बड़ा मुश्किल है रोजा, तो हैरानगी होती है कि सारा दिन रोजा रख कर फिर शाम को जो उस पर चंद अल्फाज ऐसे बोल दिए जो जायद हैं, जो ज्यादती पर हैं, तो कहाँ जाएगा वो अजर और वो सवाब जो रोजे का है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हदीस शरीफ में है कि अल्लाह करीम को रोजेदार के मुंह से आने वाली जो बू है वो मुश्क यानी खुशबू से ज्यादा अजीज है रब कायनात को। और सारा दिन मुंह रोजा रख कर शाम को जो अल्फाज हम बोल देते हैं, सारे दिन के रोजे को जाया कर दिया। फायदा इसलिए कि वो जो नियत खालिस है तामील हुक्म की, उस पर इनसार है। जब वो होगी तो शाम को उस तकलीफ में भी बंदा यही कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बार अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू ना रोजा रखने की तौफीक अता फरमाई। तो बात जब परहेजगारी की आएगी तो फिर फराज़ नबूवत के दूसरा हिस्सा जो तसव्वुफ़ है और जिस पर जिक्र अज़कार कराए जाते हैं, ये बात मैंने इसलिए अर्ज की कि ये समझा जाता है कि शोबा जात हैं दीन के, बेशक शोबा जात हैं दीन के, लेकिन तसव्वुफ़ शोबा नहीं है, तसव्वुफ़ हर शोबे की जान है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। फिर फरमाया अय्याम मादूदात, ये गिनती के दिन है। अब अल्लाह समझ अता फरमाए तो कयामत का जो एक दिन है वो 50,000 साल जो दुनिया की जिंदगी है उससे भी लंबा है। साल के दिनों में एक महीना रमजानुल मुबारक का, अल्लाह करीम ने फरमाया अय्याम मादूदा, चंद दिन है, गिनती के दिन है, थोड़े से दिन है। अब इन थोड़े से दिनों पर रज़ाए बारी ताला इतनी है कि उसने हिसाब मुकर्रर नहीं फरमाया। कितनी हिस्सों में ये बयान मिलता है कि एक नेकी है उसकी 10 मिलेंगी, कितने हिस्सों में ये बयान मिलता है कि 70 गुना सवाब मिलेगा। हालां अरबी में जब 70 से ज़ायद बयान होता है तो उससे मुराद ये नहीं है कि 70 से ज़ायद से मुराद 71 है या 72 है। 70 से ज़ायद जब बात की जाती है तो उससे मुराद ये फिक्रा है कि बेहिसाब है, उसका हिसाब ही कोई नहीं। उसके बावजूद जब रोजे की बारी आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका हिसाब ये भी नहीं बयान फरमाया, सौमली वाना अजी भी अवकमा काल मोहम्मद रसूल। अल्लाह करीम ने फरमाया रोजा मेरे लिए और इसका मैं अजर मैंने अता फरमाया। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस शरीफ में बयान फरमाया कि रोजे में रोजेदार के लिए दो खुशियां। एक खुशी तो वो कि जब ये शाम को रोजा अफ्तार करता है तो उसे एक खुशी नसीब होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह रोजा मुकम्मल हुआ, उसे कैफियत नसीब। दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस रोज वो रोजे का अजर देखेगा फिर उसे और खुशी नसीब, क्योंकि उसका कोई पैमाना नहीं बताया गया, उसकी कोई हदूद नहीं बताएंगी, उसकी शान करीमी है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ कोई बात आती है तो ये बात याद रखिए कि अल्लाह करीम की जो जात है वो लामहदूद है। इसी तरह जब जात लामहदूद है तो सिफात बारी ताला भी लामहदूद हैं। तो उसने कितना किसी पर राजी हुआ, कितना किसी पर करम किया, कितना रहम किया, इसका पैमाना नहीं हो सकता जब उसने किसी पैमाने को ही नहीं पसंद फरमाया। और जब वो अता फरमाएगा तो उसने अता तो अपनी शान से फरमाना है, भले मेरे जैसा कमजोर बंदा है सामने, लेकिन जब अता की बात आएगी तो अता तो रब्बुल आलमीन ने फरमाना। जब उसने फरमा रोजा मेरे लिए है और उसका अजर मैं अता फरमाऊंगा तो उसका अहाता मुमकिन ही नहीं है कि उसका अहाता कर सके कि इस पर कितनी अता होगी और कितना अजर और सवाब होगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार के लिए दो खुशियां, एक खुशी तो जब उसने रोजा अफ्तार किया, दूसरी खुशी जब इस रोजे का अजर और सवाब पाएगा। फिर मैंने अर्ज की कि दीन इस्लाम दीन फितरत है, तमाम फितरी तकाजों को पूरा फरमाता है और अहाता फरमाता है। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। फिर अगर तुम में कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। इसमें दो तीन पहलू हैं। एक बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम को इंसानी जो इस्तेतात है उसके मुताबिक, इसीलिए इसे दीन फितरत फरमा गया है, फितरी तकाजों को पूरा फरमाता है कि अगर कोई बीमार है, इस हालत में है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता तो उसके लिए ये छूट है कि वो रोज़ा ना रखे और गैर रमज़ान में वो जो रोज़े छूट गए उन्हें पूरा करे। और फिर अगर कोई सफ़र पर है और उस दौरान सफ़र सूरत ऐसी है कि रोज़ा नहीं रखा जा सकता तो ना रखे, छूट है, लेकिन उसका गिनती जो है वो अपने गैर रमज़ान में उसका शुमार जो है वो ज़रूर पूरा करे, चूँकि रोज़ा फ़र्ज है। अब यहां दो हिस्सों को देखने की जरूरत है। एक हिस्सा तो बीमारी कैसी है, कई दफा बीमारी ऐसी होती है जो वक्ती है, लम्हाती है, या उम्र ऐसी है कि आज तो बीमार है लेकिन ये इम्कान है कि ये बीमारी जो है सेहत में आ जाएगी और फिर ऐसा वक्त आ जाएगा कि जहां ये रोजा भी रख सकता है, वो सूरत भी आ सकती है। फिर सफर की बात आ जाती है तो एक आज के मुसाफिर के हवाले से बात भी की जाती है, कसर नमाज की बात आती है या रमज़ान के रोज़ों की बात आती है तो इस पर भी एक बहस मिलती है। और वो बहस ये मिलती है कि जी तब तो सफ़र मुश्किल था या तब का जो सफ़र था उसके लिए ज़राए ऐसे नहीं थे जैसे आज की सहूलत है, तो तब का जो सफ़र है उस पर तो ये रियायत दुरुस्त थी, आज का जो सफ़र है इस पर इस रियायत को इख्तियार ना किया जाए तो आप कसर नमाज ना पढ़ें, पूरी पढ़ा करें, रोजा जो है वो जरूर रखा करें। बात ये नहीं है, जब ये हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तो क्या अल्लाह करीम को उस वक्त और आज के वक्त का इल्म नहीं था? तब की जो जरूरियात की तकमील के जराए थे और जो वक्त बाद में आना है, जो जराए तकमील के असबाब में बाद में उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं जानते। असूल वही रखा जाएगा जो अल्लाह करीम ने बयान फरमा दिया गया है, और ये कलाम ज़ाती जो है ये रोज़े माशर तक है। बेशत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोनो मकाम में पाबंद नहीं है, अकवाम के लिए पाबंद नहीं है, औकात में पाबंद नहीं है, जमानों में पाबंद नहीं है, अब्दल आबाद है और रोज़े माशर तक। जिसे कुर्ब इलाही दरकार होगा, जिसे बंदगी दरकार होगी, जिसे अपने आप का मखलूक मानना और अल्लाह रब्बुल आलमीन का खालिक मानना यानी हक तक रसाई दरकार होगी, उसके लिए इत्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरी। और असूल व ज़वाबत भी वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ा फरमाया है, शरीयत इस्लामी की हदूद भी वो है, उसके अंदर बात हो सकती है, उससे बाहर बात नहीं हो सकती। तो हाँ, ये देखा जा सकता है कि ज़राए अच्छे हैं, सफ़र ऐसा है कि उसमें गाड़ी में भी ठंडक है, सफ़र ऐसा है कि वो आसानी से हो सकता है, सड़क ऐसा रख ले बेहतर है, लेकिन ये जिद कर लेना कि जी नहीं, तब की बात और थी, आज की बात और है, तो आज रखना चाहिए, तो फिर बात दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह नमाज के हवाले से भी है, मुसाफिर है, उसकी रियायत है कसर नमाज के हवाले से, मौका है, रुक गया है, आसानी है, पूरी पढ़ ली तो बेहतर है, लेकिन अगर कसर कर लेगा तो वो कसर जो है ये इजाजत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि जी नहीं, कसर की जरूरत नहीं है, तो फिर देखना तो हुक्म को है, और जब हुक्म को देखेंगे तो बंदा ये सोचे कि मैं सुबह उठा, गहरी नींद थी और सख्त गलबा था नींद का, उसको मैंने रद्द किया और उठा और नमाज के लिए उठा, अजान हुई, मैं नमाज के लिए आया, तो दो फर्ज पढ़ने के बजाय चार क्यों नहीं पढ़ लेते, इतना जब मुश्किल उठा भी सही और कोई काम भी नहीं, फजर अदा करनी है तो दो की जगह चार कर लो। चार इसलिए नहीं करते कि चार करेंगे तो दीन से तजावज हो जाएगा, बात पता नहीं कहां तक चली जाएगी, और फिक्र पर इतलाक करेंगे तो ये जाती नबूवत और जाती ऐलान की बात आ जाएगी, दीन ने इस्लाम की हदूद से ही बाहर बंदा चला जाएगा। दो की क्यों बात करते हैं? दो की बात इसलिए करते हैं कि दो का हुक्म है। इसीलिए जब बात सफर की आएगी, बीमारी की आएगी, तो उसमें जो देखने की है जरूरत, उस सूरत को जो हुक्म के तहत आती हो, तो सफर में है तो वो सफर मुखर कर सकता है। फिर इसी से साथ अगला इरशाद फरमाया है, वललजीन युतीकूनहु फिदयतुन तआमु मिस्कीन, और जो लोग इसकी ताकत रखते हैं वो फिदिया दे दें जो एक फकीर का खाना है। ये उन आयात में से है, जो आयत तो मौजूद है लेकिन हुक्म जो है इसका रोक दिया गया है, और इसे एक उस हिस्से तक रख दिया गया है जिनकी बीमारी या हालत ऐसी हो कि वो दोबारा रख ना सकते, और इस तरह कि बंदा ना बीमार है और ना सफर पर है, इस सूरत हाल में, और उसकी जिंदगी ऐसी है कि उसके पास अखराजात भी अपनी जरूरत से जायद हैं, तो वो रोजे रखने की बजाय किसी को फिदिया दे दे, ये दुरुस्त नहीं है, ये बात मना फरमा देंगे। इस सूरत में है कि वो इन दोनों सूरतों में से किसी सूरत में है, और एक रोजे के बदले में वो किसी एक मस्कीन को खाना खिला देता है, तो उस खाने खिलाने में भी जो सूरत देखी जाएगी वो ये देखी जाएगी कि वो खुद किस दर्जे का खाता है। हम देखते हैं वो फकीर किस दर्जे का खाता है, रूह की सुखी खाता है, एक रूह की सुखी दे दो, तो रोजेदार को चाहिए कि जिस दर्जे का खाना उसे नसीब है, किसी गरीब को देना तो फिर उस दर्जे का खाना दे दे, खाना दे दे, या उस खाने के मुताबिक मालियत जो है वो उसे अदा कर दे। लेकिन जो बात साहिब हैसियत की रोजे छोड़ने की, वो मना फरमा देगी, वो यहाँ पर उसका हुक्म नहीं है। लेकिन अल्लाह करीम ने रियायत दी है मरीज के लिए भी और मुसाफिर के लिए, क्योंकि वो ये इसको उस तरह इख्तियार करे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है और तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई दानिस्तन दानिस्तन रोजा छोड़ देगा, तो सारी जिंदगी भी रोजा रखता रहे उसका लेवल बदल नहीं हो सकता। देखिए ना, दोनों पहलुओं को देखना। इसकी अता को देखेंगे तो अल्लाह ने फरमाया बेहिसाब, उसका कोई हिसाब है ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान और मुबारक शुरू होता है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शयातीन जो हैं वो जकड़ दिए जाते हैं। अब लम्हा लम्हा अल्लाह की रहमत का मरूने मिन्नत है, एक लहजे और एक लम्हे को रहमत बारी ताला का इनकता हो जाए तो ये जिंदगी रुक नहीं, ये जिंदगी वापस अदम हो जाए, तबाह हो जाए, खत्म हो जाए, वदूद ही न बाकी रहे। हर लम्हे रहमत बारी ताला जो है वो चल रही है तो ये हयात चल रही है। तो कितनी रहमतें नाजल हो रही हैं और कितनी बरकतें नाजल हो रही हैं और कितनी सिफ्ते रहमानियत से मखलूक मुस्तफीद हो रही है और कितनी मखलूक को सिफ्ते रहमानियत के साथ और सिफ्ते रहीमियत नसीब हो रही है, हिसाब मुमकिन नहीं है। उसके बावजूद फरमाया जाता है कि दरवाजे खोल दिए जाते हैं आसमान से, अताओं के रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शैतान जकड़ दिए जाते हैं। एक और हिस्से को भी अंदाजा किया जा सकता है। हमारे मिजाज में ऐसा भी है कि जब हमको गलती करते हैं तो हम वो सारे का सारा जो है वो मलबा शैतान पर डाल देते हैं कि जी ये सारा इसलिए हुआ कि शैतान ने जी ये मुझसे कराया, मैं तो नहीं करता था। रमजानुल मुबारक में शयातीन कैद है और शयातीन में जब बात आती है तो सिर्फ जिनो इंस की बात आती है। जब बात जिनो इंस की आती है तो फिर रमजानुल मुबारक में बड़ा वाज़े समझ आ जाता है कि इंसानों में शैतान के पैरोकार कौन कौन हैं और किसी फर्द के अंदर उसकी अपनी ख्वाहिशात या उसकी अपनी नीयतें जो शैतानियत की तरफ जा रही हैं उसमें उसकी ज़ात का हिस्सा कितना। चूंकि शैतान तो कैद है, अगर फिर भी मैं बुरा सोच रहा हूं, किसी के लिए बुरा कर रहा हूं, तो फिर मेरे अपने अंदर अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे और अल्लाह करीम इससे महफूज रखे कि फिर मेरे अंदर वो शीतनत जो है वो पैदा हो चुकी है और मैं एक दर्जे का जो है वो शैतान का चेला हो चुका। और रमजानुल मुबारक में मुआशरे के किरदार देख लें, अजीब हालत हो चुकी है हमारी कि गैर मुस्लिम मुआशरे अपने मजहबी दिनों को मखलूक तक अशिया की रसाई आसान और सस्ती करती है, खुर्दो नोश से लेकर इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजों का। आप वेस्टर्न ममालिक में चले जाएं, सबसे बड़ी जो सेल लगती है, कम कीमत पर चीजें बेची जाती हैं, वो उनके मजहबी दिनों पर होती है। और हम जब बात मजहबी दिनों की आती है और रमजान और मुबारक की अयाम की आती है तो अपने अपने बाजारों की हालत जाकर देखें, अशियाए खुर्दो नोश से लेकर चीजों के इस्तेमाल करने वाले एक एक हिस्से तक कई गुना कीमत बढ़ा दी जाती है और कहा क्या आ जाता है यही तो सीजन है कमाई करने का। अब ये वो मौके हैं सोचने के कि शैतान तो बंद है भाई, शैतान बंद है तो शीतनत क्यों हो रही है, तो इसका मतलब है कि अगर शीतनत हो रही है तो ये पनप रही है उस कमल इख्तियार करने वाले के अपने नेहा खाने दिल में, जहां रोजे की बरकत से तकवा पैदा होना है और उसने मुत्तकी होना है, उस कैफियत की जगह अगर उसके आमाल साबित कर रहे हैं कि ये शीतनत है तो फिर ये देखने की जरूरत नहीं है कि। और ये हदीस शरीफ के शैतान तो जकड़ दिए गए, बांध दिए गए, वो अब किसी को इशारतन भी कुछ नहीं कह सकते। जब वो नहीं कह सकते तो वो बात हो रही है शैतान और शैतान की नस्ल की, तो शैतान जिन्हों में से, अब उसकी जो नस्ल उसमें से वो सारे तो जकड़ दिए गए। अब उसके अलावा जहां जहां खराबियां हैं वो तो सामने आएंगी, और जब वो सामने आएंगी तो ये भी बड़ा बहुत बड़ा पैमाना है, छोड़ें किसी को क्या कहना, हम सारा वक्त जो है वो किसी न किसी के कलाम में गुजार देते हैं, किसी न किसी की खराबी बयान करने में या किसी न किसी की जात को, अपने आप को देखिए। रमजान मुबारक की नाजक घड़ियां खूबसूरत हिस्से हैं। देखें अल्लाह करीम ने जुमतुल मुबारक की अताओं में उस बंदे के लिए ये अता जो हरमैन शरीफ़ैन नहीं पहुंच सकता, उसे मोहब्बत से, इखलास से जुमे की अदायगी में जो हज के सवाब अता फरमाए। और पहला अशरा जो है ये रहमत का है, और इस रहमत के अशरे में ये दूसरा जुमतुल मुबारक है। और फिर जुमतुल मुबारक के फदायल में जब बात आती है तो ये फरमाया जाता है कि एक घड़ी ऐसी आती है जुमे में कि जो दुआ मांगी जाए उसे शर्फ़े कबूलियत नसीब होती है। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक की रहमतों का अशरा, दूसरा जुमतुल मुबारक जिसमें जुमे की बरकात अपनी, फिर रमज़ानुल मुबारक का जुमा होने की बरकात अपनी, और अमूमी रहमतों के बजाय अल्लाह करीम ने आसमानों के दरवाजे खोल दिए। और गैर रमज़ान में भी जुमतुल मुबारक में एक घड़ी ऐसी है कि जिसमें हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत नसीब होती है। तो रमज़ानुल मुबारक में फिर जुमतुल मुबारक और रहमतों के इस अशरे में क्या कैफियत है। तो बजाय इसके कि इस अच्छाई की तहकीक में फिर मैं गलती पर जाऊं, तो आओ मैं अपने आप का क्यों ना मुआवजा कर लूं कि जो सोचें या जो अमल मैं इख्तियार कर रहा हूं वो कैसे है। आज तो शैतान नहीं है जो मुझे वरगला रहा है। अमूमी रहमतों से बढ़कर रहमतें और इतनी हैं जिनका हिसाब नहीं। इस रहमतों के बहर में और रमजानुल मुबारक की बाबरकत सातों में मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या अमल इख्तियार कर रहा हूं। हकूक व फराइज जो अल्लाह ने तकसीम फरमाए हैं, हकूकुल्लाह से लेकर हकूकुल इबाद तक मैं कहां खड़ा हूं, तो समझ आ जाएगी और वो तराजू अपने सामने वाजे हो जाएगा जिस तराजू ने रोजे माशर लगना है। तो ये जरूरी है कि इन चीजों को समझा जाए। वमन तत्वा खैरन फोवा खैरुल्लाह, फिर जो कोई खुशी से नेकी करे तो उसके लिए बेहतर है। यहां इस तफसीर में ये बात भी आ सकती है और हो सकती है और होती है। मुफस्सिर करीम फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा बीमार है जिसे बाद में शफा भी नसीब हो गई लेकिन उसने फिदिया भी दे दिया, एक मस्किन को जो है खाना भी खिला दिया और बाद में रोजा भी रख लिया, तो फरमाते हैं उसके लिए और अच्छा है कि उसे बाद में रोजा नसीब हो गया, उसे और अल्लाह की रजा नसीब होगी और जितनी नेकी में ज्यादती होगी, जितनी नेकी के इख्तियार करने में इजाफा होगा, इतना जो अजर और सवाब और उसका बदला है वो कई गुना बढ़ता चला जाएगा। एक बात याद रखिए, रमजानुल मुबारक का रोजा, इसका बदला फिर रमजान में नहीं होता, क्योंकि जब रमजान आता है उसके अपने रोजे फर्ज होते हैं। तो रमजान के रोजे का लौटाना हमेशा जो होगा वो गैर रमजान में होगा, और गैर रमजान के जो अयाम हैं उनकी बरकतें रमजानुल मुबारक के बराबर नहीं है। तो वो जो कैफियात रमजान की हैं वो गैर रमजान में नहीं, जो उसके हुक्म है उसकी तामील हो जाएगी। अल्लाह कबूल फरमा ले, कमी बेशी माफ फरमा ले, तो जो वो फर्ज है वो फर्ज अदा हो जाएगा। उसका दर्जा जो रमजानुल मुबारक में उसकी कैफियत और उसकी हैसियत और उस पर अता अपनी है। तो गैर रमजान जो है वो बात और होगी, वो नहीं होगी। और इसकी एक दूसरी सूरत उसे भी जरूर देखना चाहिए कि फराइज का अदा करना और उनमें रुखसत, ये दोनों पहलू किसी और की जात के नहीं है सिवाय ज़ात बारी ताला। तो जब बंदा अलील है और उसकी कैफियत ऐसी है कि रोजा ना रखे तो उसके लिए बेहतर है, और अगर रोजा रखता है तो उसके लिए खतरा है, बीमारी बढ़ जाएगी और जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। तो इस पर जो तहकीक आती है कि अगर फिर वो जिद करता है तो फिर उस पर उल्टा सवाल आ जाएगा, चूंकि जहां रुख्सत दी गई है, ये रुख्सत भी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील मकसूद है, अपनी जात की जो मर्जी है या अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील जो है वो मकसूद ही नहीं है इबादत में। तो जहां छूट है वहां जो छूट उसके मुताबिक हाँ रखा जाए बहुत बेहतर है, लेकिन सूरत हाल ऐसी हो कि उसका रखना माने जिंदगी हो तो फिर भी रखा जाए, अल्लाह माफ करे, शायद इसकी तहकीक की जाए तो ये खुदकुशी की तरफ हुक्म जो है उसकी तहकीक में ये बात चली जाएगी। तो इस नज़ाकत को ज़रूर समझना चाहिए और दीन इस्लाम में तजावज़ अपनी पसंद और नापसंद से नहीं, उन हिस्सों को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको मुकद्दम रखना चाहिए। वान तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो तो। बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका एहसान है उसने ईमान अता फरमाया, हमें खसूसी इनाम से नवाजा, हमें विरासतन कसीर तादाद हमारी जो हमें विरासतन नसीब हुआ है उसका एहसान और उसका करम। जब पहले दिन माना ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई है नहीं सिवाय अल्लाह के, कैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फिर ये बातें तो तय हो गई कि अल्लाह तूने जब रमजानुल मुबारक को फर्ज फरमा दिया, तू कादिर था सारे साल के दिनों को रोजों का हुक्म दे देता था, तू कादिर था मेरे मालिक, तूने सारे दिनों का हुक्म नहीं दिया, दिन मखसूस फरमाए, फिर उस महीने में वक्त मखसूस फरमाया, हमारी बाकी मानदा जो जरूरियात हैं उनकी तकमील के हिस्से जो हैं उनमें हमें छूट अता फरमाई, जहां कमी बेशी हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें उन कमी बेशियों में भी आराम दे दिया, सहूलत दे दी, रोज़ा रखने में, रोज़ा अफ्तार करने से और सहरी के दरमियान जो मामूलात हैं उनमें सहूलतें अता फरमा दी, तेरा करम और एहसान है। और इससे मजीद जानना और क्या हो सकता है जरिया जानने का, जब बंदे को रसाई नसीब हो जाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और अल्लाह करीम हमें दीन इस्लाम को समझने सीखने और अमल की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे, उनमें से एक दरवाज़ा रेहान है जिसमें से रोज़ादार गुजरेंगे। अल्लाह करीम हमें ये इबादत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।